ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तीर्णये जिनेणमिं वेयण महाहियारम् विविहियारम् परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। दसवीं पुस्तक, यह भी चतुर्थ वेदना खंड, और उसमें वेदना अनुयोग द्वार में अभी हम पृष्ठ संख्या 37 पर आ गए हैं। 37। अब ये जो पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व हमने देखा था, उसकी बात यहाँ चल रही है। अभी स्वामित्व की बात चलेगी, यानी ये वेदना द्रव्य विधान की बात चल रही है, और उसमें भी स्वामित्व हम देख रहे हैं। स्वामित्व में ये बात हो रही थी कि जो उत्कृष्ट जो है वो किसके है, उत्कृष्ट पद का स्वामी कौन है, ज्ञानावरणीय वेदना का उत्कृष्ट पद का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट किसके होती है, उसकी यहाँ बात चल रही थी। कल हमने देखा था, देखो सूत्र नंबर 732 पृष्ठ पर, कि जो जीव बादर पृथ्वी का एक जीवों में कुछ अधिक 2000 सागरोपम से कम स्थिति कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा हो, इसकी बात अपनी हो रही थी। और उसमें और भी क्या क्या कंडीशन है, उसको आठवें सूत्र में भी देखा हमने 35 पृष्ठ पर, कि वहां परिभ्रमण करने वाले जीव के पर्याप्त भव बहुत और अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं। वो किसकी अपेक्षा होते हैं, तो क्षभित कर्मांशिक की अपेक्षा, जिसने कर्म ज्यादा खिपाए है उसकी अपेक्षा। ये अभी गुणित कर्मांशिक की बात हो रही है, जिसके पास अधिक से अधिक द्रव्य है, परमाणु है, कर्म परमाणु, उसकी बात चल रही है। नौवे सूत्र अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 37 पृष्ठ पर, दीहाओ पज्जत धाओ रहस्याओ अपज्जत धाओ, पर्याप्त काल दीर्घ और अपर्याप्त काल थोड़े होते हैं। ऊपर तो रहस्य ने रहस्व होते हैं, यानी छोटे होते हैं। दीर्घ और रहस्व ऐसे दो शब्द है ना, देखो पर्याप्तों के काल अर्थात आयु पर्याप्त काल कहलाते हैं, वे दीर्घ हैं। शंका किनसे दीर्घ है, किसकी बात चल रही है, शुद्ध सूत्र में सूत्र की बात चल रही है ना, पर्याप्त काल कहलाता है, नीचे बराबर है अपर्याप्त काल, पर्याप्त काल। किनसे दीर्घ है, उसका समाधान, क्षपित कर्मांशिक, क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान जीवों के पर्याप्त कालों से दीर्घ है, अपर्याप्त काल थोड़े हैं। यानी एक ही जीव के पर्याप्त काल से अपर्याप्त काल बड़ा है छोटा है, ऐसी बात नहीं कर रहे, दो अलग अलग, ये गुणित कर्मांशिक जीव की बात चल रही है और क्षपित कर्मांशिक के पर्याप्त कालों से इनके पर्याप्त काल दीर्घ है, और क्षपित कर्मांशिक के अपर्याप्त कालों से इसके अपर्याप्त काल छोटे हैं। देखो समाधान फिर पढ़ते, क्षपित कर्मांशिक क्षपित गोलमान और गुणित गोलमान जीवों के पर्याप्त कालों से दीर्घ है और अपर्याप्त काल थोड़े हैं। फिर शंका किन से थोड़े हैं, वही उत्तर फिर देंगे कि क्षपित कर्मांशिक क्षपित गोलमान और गुणित गोलमान जीवों के अपर्याप्त कालों से थोड़े हैं, यानी छोटे हैं। पर्याप्तकों में उत्पन्न होता हुआ दीर्घ आयु वालों में ही उत्पन्न होता है और अल्प अपर्याप्तों में उत्पन्न होता हुआ अल्प आयु वालों में ही उत्पन्न होता है, यह उक्त सूत्र का अभिप्राय है। शंका, अपर्याप्त कालों से अपना पर्याप्त काल दीर्घ ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? शंका करके शंका ख्याल में आई ना, एक ही जीव के उसी के अपने अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल अधिक है ऐसा कहो, वो तो होता ही है सब में, वो कहने की उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। समाधान, नहीं, क्योंकि इस कथन में कोई व्यभिचार न होने से उक्त विशेषण के निष्फल होने का प्रसंग आता है, क्योंकि वो तो बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ जो बात बता रहे तो क्षपित कर्मांशिक जीवों की अपेक्षा से बता रहे। अब इसी सूत्र में गर्भित द्वितीय सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है, दीर्घ आयु वाले पर्याप्तकों में उत्पन्न हुए जीव के आयु के दो भाग होते हैं, एक पर्याप्त भाग और दूसरा अपर्याप्त भाग। ये अपर्याप्त भाग पर्याप्तक जीवों के दो भाग है, तो उसके अपर्याप्त काल को क्या कहते हैं? निर्वृत्ति अपर्याप्त। जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। सो यहाँ पर्याप्त काल दीर्घ होते हैं ऐसा कहने पर क्षपित कर्मांशिक के घोलमान और क्षपित गुणित, एक क्षपित घोलमान रखे, क्षपित गुणित घोलमान, ये वाक्य रचना चुक गई। क्षपित कर्मांशिक के क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान ऐसा चाहिए। ऊपर देखते हैं, खबित कर्मांशी या खबित गुणित घोलमान, देखो ऐसा करना है, एक क्षपित शब्द बाद में है ना, वो पहले लेना। तीसरी लाइन से पढ़ती हूँ मैं, यहाँ पर्याप्त काल दीर्घ होते हैं ऐसा कहने पर क्षपित कर्मांशिक के, अब यहाँ पर वो क्षपित शब्द लेना आगे वाला, क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान पर्याप्त कालों से गुणित कर्मांशिक जीवों के पर्याप्त काल दीर्घ होते हैं और उनके अपर्याप्त कालों से इसके अपर्याप्त काल थोड़े होते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए। देखो पर्याप्त जीव है और पर्याप्त जीवों में शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, और शरीर पर्याप्त पूरी होने पर जो उर्वरित जो है वो तो पर्याप्त काल कहलाता है। अब इन जीवों के अपर्याप्त काल, एक क्षपित वालों का अपर्याप्त काल बड़ा है और पर्याप्त काल इनसे छोटा है। अब ये दो अपर्याप्त काल और दो पर्याप्त काल, इनकी कंपैरिजन करनी है, एक क्षपित वाला है और ये गुणित वाला है। यहां से लेकर पर्याप्ति पूरी होने के बाद जो काल है उसमें वो घोलमान कहेंगे उसको, उसमें दो प्रकार के होंगे, क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान। घोलमान का अर्थ हमने परिणाम योग वाला लिया था, तो ये जो यहाँ नीचे वाला गुणित कर्मांशिक जो अभी हम देख रहे हैं पृथ्वी का एक वो जो इतना बड़ा लंबा घुमा है उसकी बात चल रही है, तो यहाँ देखो क्या कहा, पर्याप्त काल दीर्घ होते हैं ऐसा जब कहा तब क्षपित कर्मांशिक के क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान पर्याप्त कालों से गुणित कर्मांशिक जीवों के पर्याप्त काल दीर्घ होते हैं। अब यहाँ का जो पर्याप्त काल है उससे ये वाला पर्याप्त काल दीर्घ है, बड़ा है उससे, और उनके अपर्याप्त कालों से इसके अपर्याप्त काल थोड़े होते हैं, इसका अपर्याप्त काल बड़ा है, इसका अपर्याप्त काल छोटा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। दीर्घ आयु वाले पर्याप्तों में उत्पन्न होकर भी सबसे अल्प काल द्वारा पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये बात ख्याल में है ना, दीर्घ काल के पर्याप्तों में उत्पन्न हुआ है फिर भी पर्याप्त, ये पर्याप्ति पूर्ण करने का काल यानी निवृत्ति अपर्याप्त वाला जो काल है इसका छोटा है, कम से कम काल में पर्याप्तियां पूर्ण करता है, उसमें भी रेंज होगी कम से अधिक तक, ऐसा वाला जीव लिया ये। शंका, ये दोनों ही सूत्र किस लिए कहे जाते हैं? उसका समाधान, एकांत अनुवृद्धियों को छोड़कर परिणाम योगों का ग्रहण करने के लिए उक्त दोनों सूत्र कहे गए हैं, यानी इसका परिणाम योग वाला काल बड़ा है क्योंकि वहां अधिक योग संभवता है, इसलिए। अब आगे का सूत्र, और भी कंडीशंस क्या क्या है उसमें, जदा जदा आहुम बंध दी तदा तदा तप पाओगेण जहन्नयेण जोगेण बंध दी। इसका अर्थ है जब जब आयु को बांधता है तब तब उसके योग्य जघन्य योग से बांधता है, आयु की बात चल रही है। आयु कितनी बनती है वो उसकी बात नहीं, आयु के बांधने के लिए कंडीशन बताई कि जघन्य योग से, अभी वो उसका कारण क्या है वो आगे बताएंगे। अपर्याप्त व पर्याप्त भव संबंधी उपपाद और एकांत अनुवृद्धि योगों का निषेध करने के लिए आयु का बंध कब होता है, ना ही उपपाद के समय में, उपपाद तो पहला समय है वहां तो होती नहीं आयु का बंध, उसका होता नहीं है, और उसके एकांत अनुवृद्धि के स्थान है वहां पर भी आयु का बंध नहीं होता है, तो कहां पर होता है, तो आगे पर्याप्ति पूर्ण होने पर। अपर्याप्तों में भी आप कहेंगे तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले समय तक तो एकांत अनुवृद्धि है, तो उसके लिए उसके भी पहले जीव मर जाता है, तो उसके आयु का बंध कब होता होगा, तो उसकी आयु के त्रिभाग करना, और आयु बंध वाला वो त्रिभाग में बनती है उसके पहले तक वो एकांत अनुवृद्धि के स्थान हो गए। अब यहाँ के अपर्याप्त में मंथन में नहीं होती, देखो देखो अभी जो पर्याप्त जीव है, कोई भी पर्याप्त जीव है वो आयु का बंध कब करेगा, पर्याप्तियों के पहले तो नहीं करेगा, पर्याप्ति पूर्ण होने पर जो कुछ यथा योग्य काल में वो आयु का बंध करेगा, मान लेते हम यहाँ करा उसने आयु का बंध, तो उसके पहला समय में तो उपपाद, फिर एकांत अनुवृद्धि के स्थान, और फिर परिणाम योग के स्थान। अब जो अपर्याप्त जीव लेना है, अपर्याप्त नहीं इतनी उसकी आयु है, तो उसके परिणाम योग स्थान कब हो गए, तो इसके भी वंथन करेंगे तब आयु बंधने का उसका अवसर आता है, अपर्याप्तों में भी टू थर्ड जाने के बाद, तो वहां उसके परिणाम योग स्थान होते हैं टू थर्ड होने के बाद। तो अपर्याप्त व पर्याप्त भव संबंधी अभी जो कुछ यथायोग्य है उसको समझना, उपपाद और एकांत अनुवृद्धि योगों का निषेध करने के लिए यानी उसके परिणाम योग वाला जीव लेना है, इसलिए आयु बंध की कंडीशन यहां डाली। यानी एक बात क्यों लिखा यहां आयु बंध की बात, ये तो उस समय ये दोनों ही योग स्थान नहीं होते हैं इसलिए भी लिया, और दूसरी बात तथा आयु बंध के योग्य जघन्य परिणाम योग का ग्रहण करने के लिए उसके योग्य जघन्य योग का ग्रहण किया है। अब इसका ग्रहण क्यों किया है वो आगे के प्रश्न में बताएंगे। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर उसके अंतिम समय तक गुणित कर्मांशिक जीव के योग्य योग स्थानों की देशादि के नियम से खड़गधारा के समान एक पंक्ति में अवस्थित जघन्य व उत्कृष्ट दोनों प्रकार के योग पाए जाते हैं। यानी एक जीव में भी जघन्य योग से उत्कृष्ट योग तक उसकी कुछ रेंज पाई जाती है, अलग अलग उसके भेद स्थान होंगे। उनमें से आयु बंध के योग्य जघन्य योगों से ही आयु को बांधता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। गुणित कर्मांशिक जीव में भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक कुछ जो कुछ रेंज है आयु बंध वाले परिणामों के योग वाले, उसमें से जघन्य योग से आयु बांधता है। ऐसा क्यों करता है वो अभी बताएंगे। हाँ, आयु बंध के योग्य जो कोई परिणाम है योग है उसमें से जघन्य लेना, और वो कहाँ होता है तो परिणाम में होता है। शंका, हाँ, परिणाम योगों में जघन्य योग से ही आयु का बंध क्यों कराया जाता है अपना प्रश्न है ना, ये उसका समाधान। ज्ञानावरण कर्म का उत्कृष्ट संचय कराने के लिए जघन्य योग से ही आयु का बंध कराया जाता है, अन्यथा उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता। कारण की उसका कारण बताते हैं। उत्कृष्ट योग के काल में आयु के बंधाने पर जघन्य योग से आयु को बांधने वाले के ज्ञानावरण द्रव्य का जो क्षय होता है उससे असंख्यात गुणे द्रव्य का क्षय देखा जाता है। हर समय द्रव्य की निर्जरा भी चल रही है, सामान्य से जो होती है आय और व्यय कहते ना, जितना ग्रहण होता है और जितना छोड़ना होता है। तो जब उत्कृष्ट योग से आयु को बांधता है उस समय जो ज्ञानावरण कर्म का खिरना जो है वो असंख्यात गुणा होता है। इसलिए जघन्य योग से आयु को बांधने वाला जीव लिया, क्योंकि उत्कृष्ट संचय हमको चाहिए ज्ञानावरण का, अधिक से लेने वाला भी और कम छोड़ने वाला भी। इसी अर्थ को संदृष्टि द्वारा जतलाते हैं, अभी उसको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। यहाँ 6, 7 व 8 राशियां हैं, इन तीनों को ही अपवर्तित कर एक रूप के शेष होने पर समस्त भागहारों का परस्पर गुणा करने पर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है, उसका प्रमाण 168 है। यह संदृष्टि में जघन्य योग से प्राप्त द्रव्य है। यह जो है संदृष्टि में जो बताया, यह जघन्य योग से इतना द्रव्य प्राप्त हुआ, इसे उत्कृष्ट गुणकार रूप से कल्पित 32 रूपों से गुणित करने पर उत्कृष्ट द्रव्य 5376 होता है। यहाँ आयु के बिना 7 कर्मों को बांधने वाले के ज्ञानावरण द्वारा प्राप्त द्रव्य, अभी इसको टोटल द्रव्य 5376 लिया और फिर 7 कर्मों में वो डिवाइड हुआ, 5376 डिवाइडेड बाय 7 तो हो गया 768। 8 कर्मों को बांधने वाले के ज्ञानावरण द्वारा प्राप्त हुआ द्रव्य 672 मात्र है। जब आयु का बंध होता है तो समय प्रबद्ध तो उतना ही होता है सबका मिलकर, और उसको 8 में विभाजित करेंगे अभी हम, तो ज्ञानावरण का द्रव्य हो जाएगा 672, क्योंकि यहाँ पूर्व के प्राप्त द्रव्य के 8वें भाग का क्षय है। पहले जो 768 लिए थे उसका क्षय कितना है उसकी बात चल रही है, तो 768 का 8वां भाग। हानि का प्रमाण कितना कम हुआ, तो 768 में 672 माइनस किए तो 96 रह गए। जघन्य योग संबंधी द्रव्य के रहते हुए, अब ये तो पहले ये सारा हिसाब बतलाया उन्होंने, अब कहते जब जघन्य योग है तो जघन्य योग संबंधी द्रव्य के रहते हुए सात को बांधने वाले के ज्ञानावरण का भाग 24, 168 को वहां 32 से गुणा किया था, अब 168 ये जघन्य लिया, उत्कृष्ट 32 गुणा हो था, ये जघन्य अभी यहां बता रहे, तो जघन्य में सात में डिवीजन हो जाएगी, तो होता है 24। अब जो आठ को बांध रहा है उसी जघन्य योग से जो आठ को बांध रहा है, आठ को बांधने वाले के ज्ञानावरण का भाग अभी 108 जो है, 168 जो है वो आठ में डिवाइड होगा तो 21 हो जाएगा, क्योंकि यहां पूर्व द्रव्य के आठवें भाग का अभाव है। दोनों का अंतर 3 है, इसको उत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त हुए अंतर में से घटा देने पर अंक संदृष्टि की अपेक्षा 93 अंक प्रमाण ज्ञानावरण का क्षय होता है। देखो ऊपर जो डिफरेंस हमने लिखा था 768 में से 672 माइनस किए थे तो 96 आए थे, वैसे यहां 24 में से 21 माइनस किए तो 3 आ गए, डिफरेंस 3 का आया था, तो इसको उत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त हुए अंतर में से घटा देने पर, पहला अंतर था 96, अरे अब का अंतर है 3, 93 अंक प्रमाण ज्ञानावरण का क्षय होता है। एक कम उत्कृष्ट योग के गुणकार से जघन्य योग के द्रव्य के क्षय को गुणित करने पर जो राशि उत्पन्न होती है, हमने पहले देखा था 168 को 32 से गुणा किया था, वो उत्कृष्ट योग के द्वारा ग्रहण किया हुआ द्रव्य था, तो यहाँ 31 गुणा 3 करने पर 93 होते हैं। योग के प्रति इतने मात्र द्रव्य के रक्षणार्थ आयु को जघन्य योग द्वारा बंधाया है, यानी जो ज्ञानावरण का जो द्रव्य वहां खिरता है वो कम से कम खिरता है, इसलिए इसको ले लिया। अब यहाँ ये क्लियर नहीं होता है, पहले उन्होंने उत्कृष्ट योग की बात यहाँ लिखी नहीं थी, 6, 7, 8 राशि इन तीनों को ही अपवर्तित कर एक रूप के शेष होने पर, तत्तावत 6, 7, 8 राशियों तिन्नीवी ओहट्ठावी एक रूप के शेष होने पर, समस्त भागहारों का परस्पर गुणा करने पर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है। अपवर्तित करना यानी भाग देना, एक रूप यानी एक संख्या के शेष होने पर, ये उन्होंने डायरेक्ट ही बताया, उसको क्यों किया कैसे किया वो कुछ नहीं लिखा। तत्थताव 6, 7 राशियों तिन्नीवी ओहट्ठावी एक रूपावशे से, अभी वो किस राशि को कौन से भागहार से भाग देना वो कुछ लिखा नहीं है, और भागहारों का आपस में गुणा करने पर विवक्षित राशि उत्पन्न होती इतना ही लिखा, और उसका प्रमाण 168 है। यानी वो बाकी भूल जाए, अभी 168 क्या है, जघन्य योग से प्राप्त द्रव्य है 168, और उत्कृष्ट गुणकार यानी क्या है कि उत्कृष्ट योग से प्राप्त द्रव्य है 32 गुणा, उत्कृष्ट गुणकार का अर्थ है उत्कृष्ट योग से प्राप्त द्रव्य निकालने के लिए उसको 32 गुणा करना पड़ेगा, तो उत्कृष्ट द्रव्य का अर्थ होता है उत्कृष्ट योग से प्राप्त द्रव्य, वो उसके 32 गुना हो जाएगा। वो 5376 आया। जब 5376 इतना उत्कृष्ट द्रव्य ग्रहण करता है तो आयु को नहीं बांधता है तो वो 7 में डिवाइड होता है तो होता है 768। जब आयु को बांधता है तो 8 में डिवाइड होता है तो 672। अब 768 और 672 में 96 का डिफरेंस है, यानी इतना द्रव्य उसके खाते में कम आया आयु बांधने के काल में, इतना कम आया द्रव्य उसमें, 96 उसमें कम पड़े। ये खिरने की बात यहाँ नहीं है, उस इतना कम हुआ। नहीं नहीं, ये तो उत्कृष्ट योग से जिसने बांधा, क्षय ने यहाँ कम मिला उसको, 96 कम मिले उसको। आयु बांधता है तब उत्कृष्ट योग से बांधेंगे तो 96 कम पड़े उसको। आम जो 7 कर्म बांधता था तो जितना द्रव्य मिलता 768, तो उसमें 96 की कटौती हो गई। अब उस समय में अगर वो जघन्य योग से बांधता है तो जघन्य योग से बांधता है तो जब जघन्य योग से 7 कर्मों को बांधता है तो 168 डिवाइडेड बाय 7 24 ज्ञानावरण के खाते में आते थे। और जघन्य योग से आयु बांधता है तब 8 में डिवाइड होता है तो वो 21 हो जाएंगे। यानी कितनी कटौती हुई, तो 3 की ही कटौती हुई। यानी वो जो 93 उसके कम पड़ते उसके बदले में 93 पूर्व में 96 की कटौती के बदले यहाँ 3 की ही कटौती हुई। वही तो, अनंत में लेंगे तो कितना बड़ा डिफरेंस होगा। अन्य जब भी बनते तो उत्कृष्ट योग में ले लेंगे वहां, क्योंकि जितनी अधिक संख्या ले लेगा उसका 7वां भाग इसके खाते में आएगा। अब आयु बंधने के काल में ये 8 में डिवाइड होता है, इसलिए वहां उतने अंतर्मुहूर्त तक इसको जघन्य योग वाला लिया। तो यहाँ लिखा ना, योग के प्रति इतने मात्र द्रव्य के रक्षणार्थ आयु को जघन्य योग द्वारा बंधाया है। यह अपवाद सूत्र है, इसलिए बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। इस उत्सर्ग सूत्र का वह बाधक है, आयु के बंध काल को छोड़कर अन्यत्र वह सूत्र प्रवृत्त होता है, यह फलितार्थ है। यानी ये केवल आयु बंध के समय ही जघन्य योग है, अन्यथा उत्कृष्ट योग स्थानों को बार बार वो उसके साथ कर्मों को बांधता है। हाँ, अपवाद यानी एक्सेप्शन, और उत्सर्ग यानी वो जो नियम रूप रेगुलर। अब यहां तक हम आए, अब आगे की भी कंडीशंस इसके लिए गुणित कर्मांशिंग के लिए बता रहे हैं। उवरिल्लीनम ठिदिनम नियेयस उक्कस्स पदे हेठिलीनम ठिदिनम ठिदिनम निसेयस जहन्न पदे। ये पहली भी बात हमने देखी थी, क्या उत्कृष्ट स्थिति वाले के निषेकों में जघन्य पद है, उत्कृष्ट पद है, और नीचे वाले में जघन्य पद है, उसका अर्थ अब करेंगे। देखो हिंदी में, उपरिम स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है, आयु की नहीं, ज्ञानावरण की जो स्थिति बांधी है, स्थिति हम निषेकों की अपेक्षा बताते हैं ना, जैसे ज्ञानावरण कर्म पड़ा है सत्ता में, ऊपर वाले जो निषेक है वो अंत तक रहने वाले हैं, नीचे के निषेक जल्दी खिरने वाले हैं, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हमने देखे पद उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य होते हैं, तो ये ऐसे वाले निषेक है कि जिसमें उत्कृष्ट संख्या है, ऊपर वालों निषेकों में जो कोई रेंज है उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वाले, उसमें उत्कृष्ट वाला पद है, और नीचे जो जल्दी खिरने वाले निषेक है, सत्ता में पड़े हैं ना, अलग अलग समयों में ग्रहण किए हैं, तो उसमें जघन्य पद वाला है। यहां देखो, उपरीन स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है और अधस्तन स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है। ये पदों की बात अभी हम सीखे तो अभी ये क्लियर ज्यादा होता है। पहले उत्कृष्ट पद होता है ने क्या, तो पद यानी उसमें कितनी संख्या उसकी अपेक्षा उसको पद कहलाया। उपकस पदे से इन्वर्टेड उल्टा हुआ, उपकस पदम और जहन्न पदे से जहन्न पदम, ऐसी प्रथमा विभक्ति का अभिप्राय है। आपने पछा पूछा था ना वर्ण वर्ण लेना कहीं राम का जैसा लेना पद को, तो यहाँ पदम लिखा है ना, तो ये तो नपुसक लिंग में होता है उसको अम लगता है, वो वन वनम वने वनानी वैसे पदम, यानी यहाँ ये सप्तमी विभक्ति नहीं है प्रथमा है ये बताना चाहते हैं। क्षपित कर्मांशिक जीव के क्षपित गोलमान और गुणित गोलमान कर्मों के उत्कर्षण से इसका उत्कर्षण बहुत है। क्या बात है, देखो क्या कहना चाहते हैं, जिसने कर्म खिपाए हैं तो कर्म खिपाने का रास्ता क्या है, अपकर्षण द्वारा कर्म खिपाए जाते हैं। ऊपर के निषेकों में द्रव्य नीचे नीचे दिया जाता है हर समय, असंख्यात गुना असंख्यात गुना रोग खिरते रहते हैं। हमने देखा था गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है तो कैसे होती है, ऊपर के निषेकों में से नीचे आता रह जाता है। अब नया बंध भी होता है, अभी हम ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं, अभी हमारे ये मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहे, हम आमतौर की बात कर रहे हैं। तो हर समय कर्म बनता भी है, तो कर्म बनता है तो नए बंधने वाले के साथ ये जो पुराने जो कर्म है उसमें से कुछ ऊपर भी चले जाते हैं, उसको उत्कर्षण कहने में आता है। अधिक स्थिति वाले निषेकों में अभी नीचे के निषेकों के परमाणु ऊपर चले जाते हैं तो उसको कहते हैं उत्कर्षण। तो यहाँ कहते हैं इन गुणित कर्मांशिक जीवों में उत्कर्षण बहुत है। इसका अर्थ क्या है, नीचे के निषेकों में ऊपर ऊपर माल पड़ता है तो ये संचय रहेगा ना अंदर, निकल जाने के बदले वो अंदर ही अंदर उत्कर्षण करके अंदर ही रहता है। तो उत्कर्षण बहुत है और उन्हीं तीन के अपकर्षण से इसके द्वारा अपकर्षित किया जाने वाला द्रव्य थोड़ा है, उसका फलितार्थ है। वहां क्षपित वाले में अपकर्षण ज्यादा है, इसमें अपकर्षण होने वाला द्रव्य बहुत कम है और उत्कर्षण करने वाला ज्यादा है, यानी उसका द्रव्य अंदर ही अंदर पड़ा रहता है लंबे काल तक, उसका साठा ज्यादा है। और ये तो क्षपित कर्मांश वालों नीचे अपकर्षण करके वो खिरते रहता है उसका। शंका, गुणित कर्मांशिक के अपकर्षमाण द्रव्य से, अपकर्षण माने ने अपकर्षण होने वाला, जो अपकर्षण हो रहा है, स्थिति जो अधिक थी उसमें से स्थिति घटकर कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आते हैं उसको कहेंगे अपकर्षमाण द्रव्य। उसके ही उत्कर्षमाण द्रव्य बहुत है ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रश्नकार ऐसा पूछता है। अब ये सत्ता में जो कुछ द्रव्य है उस जीव को ऊपर जाने वाला द्रव्य बहुत है और नीचे वाला द्रव्य आने वाला बहुत कम है ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। आचार्यों ने क्या कहा था, इसका जितना अपकर्षण होता है वो ज्यादा है, किससे, वो क्षपित वाले से, और इसका जो अपकर्षण है वो कम है, किससे, क्षपित वाले से। तो इसी जीव में घटाते ना कि इसका उत्कर्षण ज्यादा है और अपकर्षण कम है, प्रश्न ख्याल में है ना, उसी जीव के उत्कर्षण से अपकर्षण कम है ऐसा क्यों नहीं कहा, इसके उत्कर्षण वाला द्रव्य उससे ज्यादा है और इसका अपकर्षण वाला द्रव्य वो क्षपित वाले से कम है ऐसा क्यों कह रहे हो, ये शंका करके शंका ख्याल में आई ना। उसका समाधान नहीं, क्योंकि विशुद्धि काल में वैसा नहीं पाया जाता, यानी एक ही द्रव्य में इस तरह से नहीं, एक ही जीव में ऐसा नहीं होगा। शंका, एकेंद्रियों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थितिबंध एक सागरोपम के सात भागों में से तीन भाग प्रमाण होता है, देखिए, जहां संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति बंध मोहनीय का, उसमें भी दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व का 70 यानी 70 कोड़ाकोड़ी सागर होता है, तो एकेंद्रिय में उसी कर्म का अधिक से अधिक स्थिति बंध एक सागर होता है, यानी 70 कोड़ाकोड़ी के अगेंस्ट यहां एक। तो जहां संगी पंचेंद्रिय को 30 होता है तो इसको कितना होगा, ये साधारण त्रैराशिक है तो 3/7 उसका उत्तर होता है, 30/70, 30/70 यानी 3/7, जिसको हम 3/7 सागर कहते हैं। यहां लिखा ना 7 भागों में से 3 भाग यानी 3/7 सागर। इसलिए ये शंका चल रही है, बंद समय से लेकर इतने काल के बीतने पर प्रकृत समय प्रबद्ध के सब परमाणु निर्जीर्ण हो जाते हैं, इस कारण प्रकृत में ऐसे उत्कर्षण से कुछ प्रयोजन नहीं है। इसका कहना है एकेंद्रियों में जाने पर वहां जो नई स्थिति अभी बांध रहा है वो तो 3/7 सागर है, भले त्रसों में घुमाता तभी ज्यादा बांधी थी, परंतु अभी एकेंद्रियों में है तो एकेंद्रियों में तो इतने काल में तो उतने सारे निर्जीर्ण हो जाए, खिर जाएंगे, क्योंकि इतनी उसने स्थिति बांधी है, उससे तो बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे ज्यादा उत्कर्षण द्रव्य से तो कोई प्रयोजन नहीं है, उत्कर्षण होगा भी तो भी जितनी स्थिति बांधी उससे ऊपर का तो होगा नहीं। समाधान, नहीं, सागरोपम के 7 भागों में से 3 भाग मात्र काल के बीतने पर प्रकृत समय प्रबद्ध के सब कर्म स्कंध नहीं गलते, क्योंकि उत्कर्षण द्वारा उनका स्थिति सत्व बढ़ा लिया जाता है। जिसकी स्थिति 3/7 सागर बांधी है उसमें भी उत्कर्षण द्वारा, क्योंकि सत्ता में लंबे वाले पड़े भी है और नया बंद हो रहे हैं ना। देखो, मान लेते ये अभी 3/7 सागर इसका पूर्ण होने को आया है, नीचे आए ना अभी, अब यहाँ एकेंद्रिय में पड़ा है जीव और वो नया बंध 3/7 सागर का और कर रहा है, तो इसकी स्थिति बढ़कर फिर उसमें वो मिल जाएंगे। जो भी मान लेते एक घंटे में या एक साल में खिरने जितने आई थी उसकी स्थिति, तो उसमें फिर उत्कर्षण होगा, 3/7 से बढ़ेगा नहीं, फिर भी उतना उत्कर्षण होता रहेगा उसमें। शंका, वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है? तो ये कैसे जाना है? तो कहते 2000 सागरोपमों से कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा, यह सूत्र अन्यथा बन नहीं सकता, अतः जाना जाता है कि स्थिति सत्व बढ़ा लिया जाता है। ये जो सूत्र हमने पढ़ा ना 2000 सागरोपम, ये साधिक 2000 सागरोपम कर्म स्थिति में से माइनस की और तब तक वो वहां रहा, कौन सा, ये गुणित कर्मांशिक वाले की बात चल रही, इसलिए इससे सिद्ध होती कि उसकी स्थिति बढ़ती गई, नए नए बनने के साथ उसकी स्थिति भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। शंका, यदि ऐसा हो तो अनंत काल तक उत्कर्षण कराकर संचय का क्यों नहीं ग्रहण किया जाता? अनंत काल तक उसको रखने दो उसमें, नहीं, क्योंकि कर्म स्कंदों की उतने काल तक उत्कर्षण शक्ति का अभाव है, ये बस वो उत्कर्षण होता ही रहे और वो जीव के साथ ही पड़ा रहा अनंत काल तक, ऐसा नहीं होता। शंकाकार पूछता है वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है? तो उसका समाधान, व्यक्त अवस्था को प्राप्त हुई कर्म स्थिति और शक्ति रूप कर्म स्थिति का अनुसरण करने वाली शक्ति रूप कर्म स्थिति होती है, इस वचन से जाना जाता है। देखो क्या कहते हैं, जब कर्म बांधा, अभी हम यहां 3/7 सागर की बात कर रहे हैं, तो 3/7 सागर तक का ये नया कर्म बांधा, हम ये नए बंधने वाले की बात करते हैं, बनने के बाद वो सत्ता में आ गया, उसकी लिमिट कितनी है? 3/7। उसमें भी कोई परमाणु जल्दी खिरेगे, अभी अंतर्मूर्त में खिरेगे, और कोई तो तीन सप्तमांश सागर तक खिरेंगे। यहाँ की जो इन परमाणुओं की कितनी स्थिति है अभी अंतर्मूर्त, अभी हम मान लेते हैं एक घंटा है, एक घंटे में खिरने वाले हैं, परंतु उस समय में बांधने वाले उसका काल कितना था? तीन सप्तमांश सागर। कुछ वो उसकी शक्ति रूप स्थिति है, शक्ति इसमें कितने काल तक रहने की है, ये खिरेगा भी एक घंटे में, परंतु उस समय जब बांधा था तो शक्ति रूप स्थिति इसमें कितनी है? तीन सप्तमांश। ये ज्यादा नहीं हो सकती, उससे बढ़कर एक कोड़ा कोड़ी हो जाए कि एक कोड़ी सागर हो जाए, ऐसा नहीं बन सकता। उसको व्यक्त यानी उसके एक एक परमाणु जो हमने निषेक रचना बतलाते हैं वो उसकी व्यक्त स्थिति है, और शक्ति स्थिति ने उस समय बंधने वाले उसके तीन सप्तमांश सागर एक इंद्रियों में उतनी बांधी है अधिक से अधिक, ये उसकी शक्ति रूप स्थिति है। तो उसको लांग कर वो अधिक स्थिति वाले मान लेते हैं वो द्विंद्रियाधिक में चला जाए, पंचेंद्रिय में भी चला जाए। अब वहां जाने के बाद वो बड़ी लंबी स्थिति बांधेगा, परंतु ये जो इसमें शक्ति कितनी है ऊपर चढ़ने की? तीन सप्तमांश, तो वो अधिक नहीं चढ़ सकते। हाँ? क्या देखो, तीन सप्तमांश से ज्यादा उसमें बढ़ नहीं सकता। उत्कर्षण होकर भी वो कितने तक ही चढ़ सकता है? तीन सप्तमांश तक ही चढ़ सकता है। ऊपर नहीं जाएगा।
तो वो तो उसकी आयु कभी ये जो तीन सप्तमांश ये
कौन से वो तो नए नए बांधता रहेगा ना नया बंध चल ही रहा है ना, हर समय बंध भी चल रहा है, और उत्कर्षण होता है उसके लिए नए बंध की ही कंडीशन है। मान लेते तीन सप्तमांश सागर तो हर समय नहीं उत्कृष्ट बंध रहा है, जिस समय बांधा है मान लेते उसने एक सप्तमांश ही उसने बंध किया था, तो उसकी शक्ति रूप कितनी है? एक सप्तमांश ही है, तीन सप्तमांश तक भी नहीं बढ़ेगा वो। उत्कर्षण होकर भी उसमें शक्ति कितनी अधिक से अधिक होने की? सत्ता में आया और अभी अधिक बांध लेते, तीस कोड़ा कोड़ी की कोई बांध रहा है तो भी वो अधिक नहीं चढ़ेगा, वो वहां तक ही चढ़ेगा जितनी उसकी शक्ति रूप स्थिति है। हाँ, अधिक अभी संगी में आया या पंचेंद्रियों में आया द्विंद्रियादि में आया और अधिक स्थिति भी बांधी, तो भी जो एकेंद्रियों में जो बांधे थे परमाणु उनमें, हाँ वो इतने ऊपर तक नहीं चढ़ेंगे, उसका उत्कर्षण ज्यादा काल का नहीं होता है। उत्कर्षण जब उत्कर्षण होकर ऊपर के निषेकों में जाके मिलते हैं, वो कहाँ तक के निषेकों में अधिक से अधिक उत्कर्षण हो सकता है? जितनी मूल स्थिति बांधी थी उतनी ही शक्ति है उसमें। देखो इसको फिर पढ़ती हूँ। व्यक्त देखो ना, आप अपने उसमें पढ़ाना बताना।
देखिए अभी यहाँ पर देखिए, किसी जीव ने यहाँ से यहाँ तक की बांधी है, ये हम मान लेते कि तीन सप्तमांश है, ये तो तीन सप्तमांश तो ज्ञानावरणी कर्म की बात है। अब वो एक इंद्रिय में से मान लेते हैं हम पंचेंद्रिय में गया और उसने तीस कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा, तो यहाँ जो हमने तीन सप्तमांश वाले जो कोई कर्म बांधे थे ज्ञानावरणी के, उनका उत्कर्षण होना है तो इसमें जाके मिले, लेकिन मिले तो वो यहाँ तीस कोड़ा कोड़ी वाले तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो उनकी कैपेसिटी जास्ती में जास्ती तीन सप्तमांश जो काल होगा उसके अंदर वो उदय में आएंगे ही आएंगे, बस इतनी बात बताना चाहते हैं। तो है शक्ति रूप जो शक्ति कह रहे हैं, यानी वो तीन सप्तमांश की शक्ति है, व्यक्त यानी कभी यानी उत्कर्षण होके वो अधिक में जाके नहीं मिले
हो सकता है, वो रहेंगे थोड़े काल ज्यादा, उत्कर्षण उसका उतने तक ही होगा। हाँ, वो उसका जो मैक्सिमम काल है रहने का उससे अधिक नहीं रहेंगे। हाँ हाँ उतने ही है। नहीं नहीं, कैपेसिटी तो उसकी बढ़ती नहीं है, तो वो निकल ही जाएंगे परमाणु। हाँ, निकल जाएंगे, उससे अधिक तक नहीं।
तीन सप्तमांश जब बांधे थे वो उत्कर्षण होकर ऊपर भी चले जाए तो तीन सप्तमांश काल मान लो कि सात बरस के बाद आना है तो सब उतर जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं तो कितना स्टॉक होगा, यही तो कह रहे हैं संचित करा देते हैं कायम के लिए। यहाँ पहले
तो नीचे लीवर वाला है कोई, तो वो तो बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते, कुछ परमाणु ऐसे रहेंगे कि हर नए परमाणु के साथ उत्कर्षण होते रहे उत्कर्षण होते रहे उत्कर्षण होते।
देखो 41 नंबर पृष्ठ पर आखिरी लाइन है, वहाँ कह रहे हैं यदि ऐसा हो, एक पेज पीछे, तो अनंत काल तक उत्कर्षण कराकर संचय क्यों नहीं कराते? वे उसकी कैपेसिटी नहीं, उसने पहले जितने काल बांधा उतने ही तक जाएगा, उससे अधिक उत्कर्षण नहीं होगा। ये पहले तो कुछ समझा नहीं था लेकिन बाद में एकदम क्लिक होगा।
चलो देखो हम ये कौन सी कंडीशन पढ़ रहे थे ना, हाँ जगन्य की बात हो गई, आयु की, ये स्थितियों की बात चल रही है ना, वो प्रेम स्थितियों का निषेक उत्कृष्ट अदर्शन के जगन्य, उसमें ये बात चल रही है। अब 42 पृष्ठ पर ये एक दो दूसरी शंका भी, बहुत बहुत बार संकलेश को प्राप्त हुआ, इस सूत्र से ही स्थिति बंध की अधिकता और उत्कर्षण की अधिकता सिद्ध होती है, अतः यह सूत्र निरर्थक है। पहले बात आई थी ना, बहुत बहुत बार संकलेश को प्राप्त हुआ, ये बादर की बात आई। सातवें में अपर्याप्त तो थोड़े होते हैं, पर्याप्त तो दीर्घ होते हैं, आयु को बांधता है, ये कहाँ गया? बहुत हमने पढ़ा था इसको, बहुत बहुत बार संकलेश को प्राप्त हुआ है। ये 34 पृष्ठ पर है, संकलेश बहुत होते हैं, उन्हें संकलेश बहुत होते हैं। हाँ 34 पर उनके संकलेश बहुत होते हैं, ऐसा लिखा है। तो अभी उसका यहाँ उत्तर दे रहे हैं, शंका क्या पूछ रही कि संकलेश ज्यादा है तो स्थिति अधिक बांधेगा, जो कुछ अशुभ कर्म बांध रहा है अभी ज्ञान और बांध रहे तो उसमें स्थिति अधिक पड़ेगी, संकलेश परिणामों के कारण अशुभ कर्मों में लंबी स्थिति पड़ेगी, शुभ परिणाम होते हैं तो क्या कहते हैं तो पुण्य जो है उसमें अधिक स्थिति पड़ती है। अब यहाँ उसकी तो बात नहीं, ज्ञानावरण है तो पाप प्रकृति है तो इसकी लंबी स्थिति पड़ेगी, तो कहते हैं कि बहुत बार संकलेश को प्राप्त होता है उसके कारण स्थिति बंध की अधिकता होती है, लंबी स्थिति बंधी जाती है और उत्कर्षण की अधिकता सिद्ध होती है, और उसके साथ साथ सत्ता में जो अन्य परमाणु है अभी पड़े हुए वो भी उत्कर्षण होता है। जब जब बंध होता है तो मात्र बंध ही नहीं होता है, पुराने कर्मों में उत्कर्षण भी होता है संकलेश के कारण। तो कहते हैं इसलिए ये दोबारा ऐसा अलग से सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सूत्र निरर्थक है। ये नीचे के पद वाले ऊपर के पद वाले ये जो बातें बताई उत्कर्षण की, ये फिर दोबारा क्यों बताते हैं? उसका समाधान, यदि कषाय मात्र ही उत्कर्षण का कारण होता तो वह सूत्र निरर्थक होता, यानी कषाय होना इतना ही उत्कर्षण का कारण नहीं है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व व अरहंत सिद्ध बहुश्रुत एवं आचार्य की अत्यासना अर्थात आसादना, आसादना यानी विराधना करना, और तीव्र कषाय उत्कर्षण का कारण है। मात्र तीव्र कषाय ही उत्कर्षण का कारण नहीं है तो उसके साथ साथ क्या है? तीव्र मिथ्या तो भी उसके उत्कर्षण का कारण है। अरिहंत, सिद्ध, बहुश्रुत और आचार्य, इनकी विराधना, साधुओं की विराधना, ये भी उत्कर्षण का कारण है। और तीव्र कषाय, यानी अकेले तीव्र कषाय की बात नहीं है, कषाय के साथ साथ ये जो अन्य भी बातें हैं वो भी उत्कर्षण का कारण है। कुछ अलग है आपको मिला? हाँ, 42 पृष्ठ पर मैं पढ़ रही हूँ, और नीचे से जो समाधान वाली है उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा। इस कारण यह सूत्र निरर्थक नहीं है, अथवा दूसरे पद्धति से बताते, उपरिम स्थितियों के निषेध का इस सूत्र के अर्थ का इस प्रकार कथन करना चाहिए। यथा बध्यमान और उत्कर्षमान प्रदेशाग्र को, बध्यमान यानी जो बंध रहे हैं उसको कहते हैं बध्यमान, और उत्कर्षमान यानी जो उत्कर्षण होकर उसके साथ जुड़ते हैं उसको कहते हैं उत्कर्षमान। इन प्रदेशाग्र को निक्षिप्त करता हुआ गुणित कर्मांशिक जीव, निक्षिप्त करना यानी उसमें डालना, निक्षेप करना यानी जैसे बंधते हैं निषेक, तो उसकी निषेक रचना होती है, और उसी समय जो उत्कर्षण होते हैं तो उत्कर्षण होकर वो बंधने वाले के साथ जुड़ जाते हैं। उसका निक्षेप होना यानी नीचे के निषेकों में ऊपर के निषेकों में डालना। अब ये नीचे ऊपर तो कुछ होता नहीं है, समझने के लिए हम कहते हैं उसकी स्थिति बढ़ती है, उसको कहते हैं उसका निक्षेप किया ऊपर। तो ऐसा जो गुणित कर्मांशिक जीव है वह अंतरंग कारणवश प्रथम स्थिति में थोड़े प्रक्षिप्त करता है, द्वितीय स्थिति में विशेष अधिक प्रक्षिप्त करता है, तृतीय स्थिति में विशेष अधिक प्रक्षिप्त करता है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति के प्राप्त होने तक विशेष अधिक के क्रम से प्रक्षेप करता है। अभी ये जो बध्यमान है, हम देखते हैं ना, एक समय में बंधे हुए, आबादा काल छोड़कर निषेक रचना होती है। अब यहाँ ये सत्ता में पड़े हुए निषेक है, इसमें से अभी उदयावली के तो निकल ही जाते, उसका तो उत्कर्षण नहीं होता है। उदयावली के छोड़कर यहाँ के जो है ये सब अपने अपने ऊपर के निषेकों में जा मिलते हैं। तो नीचे के निषेकों में जो अभी एडिशनल जो इसमें आया, यहाँ दिया ना, नीचे के स्थिति के निषेकों में कम द्रव्य दिया गया, यहाँ ज्यादा दिया, यहाँ और ज्यादा दिया, यहाँ और ज्यादा दिया, इस तरह से ऊपर ऊपर के निषेकों में अधिक द्रव्य दिया गया और नीचे नीचे के कम दिया। हम अपकर्षण में उल्टा देखते ना, नीचे के निषेकों में ज्यादा, ऊपर थोड़ा कम, घटता हुआ गोपुच्छ जैसा। अभी अंतरंग कारण के निमित्त, अभी इसके जो कुछ विशिष्ट परिणामों के निमित्त से क्या होता है, ये हमें गुणित कर्मांशिक वाला लेना है। तो नीचे के स्थितियों के निषेकों में कम माल दिया, कम परमाणु, हाँ होने वही तो, हाँ उत्कर्षण में उल्टा ही है अभी यहाँ पर। तो नीचे के निषेकों में कम और ऊपर अधिक, तभी तो संचय ज्यादा होगा उसका, तभी तो उत्कृष्ट पद वाला लेना है ना। उपरिम स्थितियों के निषेकों में उत्कृष्ट पद, उत्कर्षण होकर वो अधिक परमाणु ऊपर चले गए और नीचे भी उत्कर्षण हुआ मगर उसमें कम परमाणु दिए गए, इस तरह से उल्टा गोपुच्छ ले सकते इसको। एक केंद्रीय और पंचेंद्रियों में एक समय प्रबद्ध कैसा होगा, आप ही विचार करके हमको बताना। समय प्रबद्ध काहे से डिसाइड होता है? हाँ, बंधने वाले परमाणु, उनकी संख्या किस पर निर्भर है? योग पर। अभी योग एक केंद्रियों को ज्यादा है कि पंचेंद्रियों को?
हाँ,
वो बढ़ जाएगा ना, अभी ये एकेंद्रीय के बाद उसको पंचेंद्रीय में लाने वाले हैं उसको बाद में लिया है, पहले एक केंद्रियों में मैक्सिमम इकट्ठा करने वाला जीव है, अभी हम अभी फिनिश नहीं हुआ उनका। हाँ देखो देखो, निक्षेप करने वाला की बात है ना, यथा बध्यमान और उत्कर्षमान प्रदेशाग्र को निक्षिप्त करता हुआ गुणित कर्मांशिक जीव अंतरंग कारणवश, यह भी वहां अंतरंग कारणवश प्रथम स्थिति में थोड़े प्रक्षिप्त करता है, यानी नीचे के स्थिति में कम परमाणु है, ऊपर में ज्यादा ज्यादा है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति के प्राप्त होने तक विशेष अधिक के क्रम से प्रक्षेप करता है। जब जब हमने अपकर्षण देखा था तो ऊपर कम होता चला जाता है, एक एक चय घटता हुआ, अब यहाँ उल्टा प्रक्षेप कर रहा है, उसके लिए उसके कुछ परिणाम कारणभूत है। शंका, यह निषेक रचना गुणित कर्मांशिक जीव के होती यह किस प्रमाण से जाना जाता है? यह ऐसी उल्टी जो है ना, नीचे कम और ऊपर ज्यादा, गुणित कर्मांशिक की ऐसी निषेक रचना होती है, ये कैसे जाना? उसका समाधान इसी सूत्र से जाना जाता है। और एक प्रमाण दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। सूत्र है वह स्वयं प्रमाण है, उसको लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार देखते हैं ना, ये सूरज उगा है कि नहीं, हमको टॉर्च लाइट लेके देखना नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था दोष का प्रसंग आता है, क्योंकि फिर वो दूसरे प्रमाण के लिए तीसरा प्रमाण भी मौजूद होना चाहिए, वो उसको प्रूव करने के लिए और चौथा। शंका, यह सूत्र बंधने वाले प्रदेशों की रचना का निर्देश नहीं करता, किंतु उत्कर्षण को प्राप्त होने वाले प्रदेशों की रचना का निर्देश करता है, ऐसा व्याख्यान क्यों नहीं करते? क्या कहा, ये जो ऐसा उल्टा जो है ना निषेक रचना, नीचे कम और ऊपर जाते ज्यादा, ये उत्कर्षण में हो तो समझे, पर बंध में तो ऐसी होगी, तो बध्यमान को भी साथ में लिया, तो बंधने वाले भी नीचे परिणामों के वश बंधने वाले में भी ऐसी निषेक रचना होती है, नीचे कम और ऊपर ज्यादा, और उत्कर्ष वाले भी। शंकाकार ने पूछा कि अकेले उत्कर्षमान में कहो, बध्यमान में क्यों कह रहे हो? उसका भी बताएंगे। नहीं, क्योंकि उत्कर्षण बंध का अनुसरण करने वाला होता है, इसलिए उसमें दूसरे प्रकार से प्रदेशों की रचना नहीं बन सकती। यानी बध्यमान तो ऊपर कम हो और उत्कर्षमान नीचे से ऊपर ज्यादा हो, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो उत्कर्ष होने वाले जो परमाणु है वो बंधने वाले का अनुसरण करते हैं, इसलिए बध्यमान में भी और उत्कर्षमान में भी, नीचे के निषेकों में कम परमाणु और ऊपर के ऊपर निषेकों में अधिक परमाणु होते हैं। ये गुणित कर्मांशिक के लिए है, ये सामान्य रूल तो नीचे ज्यादा होता है और ऊपर कम, ये इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं ना, कितनी बातें हम पहली बार सुन रहे हैं यहाँ। इसलिए मुझे भी पहले ऐसे लगा था ना, उत्कर्षमान बध्यमान को तो हमने ऐसे ही दिखाया उल्टा, मगर उसमें भी नीचे कम परमाणु ऊपर ज्यादा परमाणु, परिणाम विशेष के कारण ऐसा लिखा, अंतरंग कारणवश। अभी ये गुणित वाले की ऐसी होगी, हो सकता है, सभी हो सकते हैं, क्षपित भी हो सकते हैं, गुणित भी हो सकते हैं। क्षपित वाले तो जो कुछ सम्यक्त के काल में उनके, हाँ, और फिर भी गिर के नीचे आते हैं, उसमें भी कितने ही जो गिर कर नीचे आए हैं, उसमें एक इंद्रियों में भी घुमाया है क्षपित वालों को, हम देखेंगे उसकी बातें भी कहाँ, अभी तो गुणित वाला चल रहा है, क्षपित वाले की चिंता हम बाद में करेंगे दिवाली के बाद। हाँ। हाँ देखो ये नीचे का समाधान पढ़ा ना अभी, फिर शंका, प्रदेश विन्यास विशेष के लिए न होकर शेष पुरुषों के अपकर्षण और उत्कर्षण की अपेक्षा गुणित कर्मांशिक के अपकर्षण और उत्कर्षण के अल्प बहुत्व बतलाने के लिए यह सूत्र क्यों नहीं हो सकता, क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं शेष पुरुष यानी हमें तो अभी तक क्या देखा था, अपकर्षण उत्कर्षण के नियम या बंधने के नियम तो नीचे के नीचे को में ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, तो कहते हैं और गुणित कर्मांशिक का जो अपकर्षण जो है उत्कर्षण है उसका जो अल्प बहुत्व है कहाँ कम होते कहाँ ज्यादा होते हैं उसके बतलाने के लिए सूत्र ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि बहुत बहुत बार बहुत संकलेश को प्राप्त हुआ इस सूत्र से उस अर्थ की सिद्धि हो जाती है। यहाँ कहा कि ऐसा सूत्र में स्पष्ट बता दो कि आम जीवों की अपेक्षा से गुणित कर्मांशिक जीवों में ये बात होती है, तो कहते ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत बहुत बार संकलेश को प्राप्त होता है इससे वो सिद्ध हो जाता है। और तीर्थंकरादिकों की आसाधनारूप मिथ्यात्व के बिना तीव्र कषाय होती नहीं क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। तीर्थंकरादि लिखा हाँ, उसमें देखा था ना संकलेश के लिए सबको लिया, तो इधर तीर्थंकरादि में सब आ गए, तीर्थंकर भी आचार्य भी उपाध्याय भी साधु जो कुछ हाँ मुनि सब, तो उनकी आसाधनादूप जो मिथ्यात्व है वो तीव्र कषाय है जिस काल में हाँ यही हो, क्योंकि जो श्रेणी को 33 सागर का बंद हुआ था, नरकायु का बंद हुआ था ना उस समय, तो इसको तीव्र कषाय। हमें तो बस ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि भगवान की विराधना के उसमें क्या है, उसमें क्या कषाय किया उसने, वो तो अपने भगवान को मान रहे ऐसा लगता है ना तीव्र कषाय की हाँ पता ही नहीं ना तीव्र कषाय किसे कहना, तीव्र मिथ्यात्व के साथ वो तीव्र कषाय है क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व हाँ ये तीव्र मिथ्यात्व जब 70 कोड़ा कोड़ी का बांध रहा है तो ये ज्ञानावरणादि भी वो उत्कृष्ट वाले बंधेगी उसके, तो वो तीव्र कषाय कहलाएगी उसकी।
यहाँ पर बात ये है कि हम जो कोई क्रोधी होगा जो कोई लोभी होगा मानी होगा उसको ही तीव्र कषाई मानते हैं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो देवगुरु शास्त्र की विराधना करता है वो अधिक कषाई है, यानी जैसा हम देखते हैं कि ये राजकारणी लोग जो होते हैं वो तो सामने मुंह के सामने तो हाथ जोड़ के हाय करेंगे और पीछे से उनको जो करना है सो करेंगे, वो जो मायाचारी है वो प्रकट होएगी बाद में हमको पता लगते कि इन्होंने ऐसा किया। वैसे ये जो देवगुरु शास्त्र के प्रति जिनको बिल्कुल लगाव नहीं है अरुचि है अरुचि हो वह भी
और विपरीत उनका स्वरूप विपरीत मानना जिसको अवर्णवाद
वो बात अलग हाँ। लेकिन अभी ये आप शास्त्र पढ़ो या ऐसी कोई हम बात करेंगे तो नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ये जो अरुचि है ये इटसेल्फ तीव्र कषाय है, यानी ये अरुचि तो श्रद्धा गुण की पर्याय है विभव पर्याय फिर भी साथ साथ में तीव्र कषाय है। ठीक है ना
दर्शन मोहनी
आपका कहना ऐसा है दर्शन मोहनी
ऐसा जो दर्शन मोहनी है तीव्र बंध वाला उसके साथ वाला जो कषाय है वो तीव्र कषाय है जिसके कारण ये ज्ञानावरणादि का भी ऐसा तीव्र बंध होगा।
नहीं हम तो ऐसे ही मतलब बाकी है क्रोध मान माया लोभ में ही कषाय देखते हैं लेकिन उससे भी तीव्रता ये मिथ्यात्वी की होती है ये बात बताना चाहते
हैं। तीव्रता ने वो जो सम्यक्त्व का विराधक ऐसे जो कषाय है इस तरह से उसका तीव्रता लेना मात्र उसकी डिग्री नहीं लेना वो तो उसमें हमने देखा चार टक पूरा देखा था कषाय के, वो पृथ्वी वाले ये शिला भेद वाले ऐसे अलग अलग भेद देखे थे। हाँ तो वो अलग है और उसे वो अनंतानुबंधी आदि जो भेद है वो अलग है, हर एक में तीव्र मंद परिणाम अलग हो गए। हाँ जैसे ये है ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप जैसा वो कठिन बन जाता है वहां का पाप। यानी जहाँ पाप के शालन के लिए जाते हैं, ये तो अन्य मति भी इतना मानते हैं ना। ये तो सामान्य जो नीति शास्त्र का वचन है। देखो ये समाधान फिर पढ़ते नीचे से दूसरी लाइन, तीर्थंकरादिकों की आसाधना रूप मिथ्यात्व के बिना तीव्र कषाय होती नहीं क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता, तथा इस प्रकार की कषाय स्थिति उत्कर्षण और स्थिति बंध की निमित्त न हो सो भी नहीं है। यानी ऐसी जिसके तीव्र कषाय होगी तो उसका स्थिति का उत्कर्षण भी होगा और नया जो बंध है वो भी अधिक काल का बंधेगा, वैसा होने पर उनके निष्कारण होने का प्रसंग आता है। यानी यदि ऐसा नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता और बंध भी ऐसा लंबा नहीं होता, निष्कारण यानी बिना कारण के हुआ ऐसा मानना पड़ता, इसलिए तीव्र संक्लेश विलोम रूप से प्रदेश विन्यास का कारण है और मंद संक्लेश अनुलोम रूप से प्रदेश विन्यास का कारण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। प्रदेश विन्यास ने ये जो परमाणु ऊपर नीचे होते हैं, तो विलोम और अनुलोम याद है किसको कहना है। हाँ देखो ये इससे ही होता है। देखो तीव्र संक्लेश के कारण क्या होता है, विलोम होता है यानी ऊपर चले जाते हैं, ये विलोम होता है, और अनुलोम है ऊपर के नीचे आना, विलोम रूप प्रदेश विन्यास यानी उत्कर्षण और अनुलोम रूप प्रदेश विन्यास यानी अपकर्षण। मंद संक्लेश और तीव्र संक्लेश लिया, विशुद्ध नहीं लिया अभी, उसको भी कहीं कहीं लेते हैं। अनुलोम रूप से प्रदेश विन्यास एक शब्द है यानी अपकर्षण हो जाएगा उसका, ऊपर जाना यानी वो उत्कर्षण होना, विलोम और अनुलोम। देखो शंका, इस प्रदेश रचना का क्या फल है? प्रदेश रचना यानी ये जो उत्कर्षण होता है, नीचे अपकर्षण होता है आदि जो कुछ बातें होती है, तो उसका फल क्या है? समाधान, बहुत कर्म स्कंदों का संचय करना ही इसका फल है। ये संचय अधिक हो जाता है इसके द्वारा, उत्कर्षण के द्वारा क्या हुआ, ऊपर के निषेकों में माल अधिक है तो संचय अधिक हुआ, सत्ता में अधिक कर्म पड़े रहे। शंका, संक्लेश और विशुद्धि इन दोनों से अनुलोम रूप से ही प्रदेश विन्यास होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते? दोनों से ही अनुलोम होता है, अपकर्षण होता है, ऐसा मानो ना, नीचे आना, अपकर्षण होना, अनुलोम यानी अपकर्षण होना। यह मंद संक्लेश को ही विशुद्धि भी कहा है, तो कहते संक्लेश से भी अनुलोम होता है यानी अपकर्षण होता है, और विशुद्धि से भी होता है, मंद संक्लेश से भी और तीव्र संक्लेश से भी, ऐसा क्यों नहीं कहते? तो उसका समाधान, नहीं क्योंकि विरुद्ध कारणों से एक कार्य होता है ऐसा मानने में विरोध आता है। हम देखते ना ये देव द्रव्यान योग में भी हम पढ़ते कि कौन सा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, किससे, वितरागता से भी हो जाए और शुभराग से भी हो जावे, ये कैसे हो सकता है? शुद्धोपयोग से भी मोक्ष मार्ग में बढ़े और जो महाव्रत आदि शुभ परिणाम है उससे भी हो जावे वो संवर निर्जरा, ये कैसे हो सकता है? दो विरुद्ध कार्य, कारण दो विरुद्ध है और कार्य एक हो, ये नहीं हो जाता। यह उच्चारणाचार्य का अभिप्राय कहा है, उच्चारणाचार्य ने भी जो कुछ उच्च आचरणाचार्य अभिप्राय कहा है। शंका, इससे क्या सिद्ध होता है? उसका समाधान, इससे त्याग के बल से जघन्य सत्कर्म को प्राप्त हुए जीव के मिथ्यात्व का जो अपना जघन्य सत्व प्राप्त होता है, उससे नरक गति में उसका सत्व असंख्यात्व भाग अधिक सिद्ध होता है। त्याग के बल से यानी संयम, जो कुछ उन्होंने व्रतादि का अंगीकार किया है उसके बल से क्या होता है, जघन्य सत्कर्म, सत्कर्म यानी सत्ता वाला, जो कर्मों की जो सत्ता है, कर्म के जो वहां परमाणु है, यानी अपकर्षण होगा उसका, उसके भी कषाय मंद है तो अपकर्षण हुआ उसके, और उस जीव के मिथ्यात्व का जो अपना जघन्य सत्व प्राप्त होता है, सत्ता में उसके कर्म परमाणु कम हो गए, जैसे गुणित लिया वहां वो कम वाला लेना है, उससे नरक गति में ऐसा जो जीव है उससे कौन सा जीव लिया, त्याग के बल से जिसका मिथ्यात्व का सत्व कम हो गया है उससे, अभी कंपैरिजन कर रहे, इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर जीव क्या करे, नरक गति में उसका सत्व असंख्यात्व भाग अधिक सिद्ध होता है, नरक गति में वो ज्यादा द्रव्य वहां पड़ा है, और ये जो त्याग वाला जीव है उसके सत्ता में वो कम है, असंख्यात्व भाग इतना है। किंतु अभी ये तो कुछ कुछ बातें बता, किंतु भूतबलि भट्टारक के अभिप्राय से विलोम विन्यास का कारण गुणित कर्मांशिकत्व और अनुलोम विन्यास का कारण क्षपित कर्मांशिकत्व है, न कि संक्लेश और विशुद्धि, यानी मात्र संक्लेश और विशुद्धि से वो नहीं होता है, गुणित कर्मांशिक और क्षपित कर्मांशिक के ये ऐसा अपकर्षण उत्कर्षण या जो अनुलोम विलोम होता है। हम प्रतिलोम हमने शब्द सुना था पहले, अनुलोम प्रतिलोम या विलोम शब्द आया। शंका, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त जीवों के ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय और अंतराय कर्म के 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा को छोड़कर, ये 3000 वर्ष क्यों लिए आबाधा, हाँ उसका उत्कृष्ट स्थिति जो है वो 30 कोड़ाकोड़ी सागर की है, तो प्रोपोर्शन क्या हुआ, 30 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए 3000 वर्ष, तो एक कोड़ाकोड़ी सागर के लिए कितने, 100, और ये 3000 लिए ना, 3000 यानी 3000, हाँ इसको छोड़कर जो प्रथम समय में प्रदेशाग्र निषिक्त होता है वह बहुत है। शंकाकार पूछ रहा है, जो हमें भी हमने अभी तक क्या सीखा था कि 3000 वर्ष के बाद उसका पहला निषेक खिरेगा, एक समय में बंधा है, 30 कोड़ाकोड़ी का बांधा है तो उसका आबादा काल है 3000 वर्ष, एक समय पश्चात पहला निषेक खिरेगा, उसमें बहुत ज्यादा द्रव्य है, हमने क्यों गोपुच्छकार निषेक रचना होती है तो उसमें द्रव्य ज्यादा है, जो द्वितीय समय में प्रदेशाग्र निषिक्त होता है वह विशेषहीन है, यानी दूसरे विशेष में परमाणुओं की संख्या विशेषहीन है, एक चय कम है, इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक ले जाना चाहिए, जिसको हम निषेक रचना कहते हैं, आबादा काल के बाद पहला निषेक में परमाणु ज्यादा है, ऊपर एक एक चय से कम होते होते सबसे ऊपर का जो निषेक है उसमें सबसे हीन संख्या है परमाणुओं के, इस प्रकार काल विधान में उत्कृष्ट स्थिति का भी अनुलोम क्रम से प्रदेश विन्यास देखा जाता है। अच्छा अच्छा, अनुलोम मैंने ऊपर टेपरिंग, ये ऐसा वाला, ये हम हमेशा जो गोपुच्छे लिखते हैं ना, नीचे ज्यादा और ऊपर कम, और यहाँ जो प्रतिलोम मैंने अभी विलोम मैंने उल्टा दिखा है। हाँ हाँ हाँ, प्रदेश विन्यास है ना, उसके जो कुछ दिख रहे हैं, हाँ वो उत्कर्षण अपकर्षण में अभी नहीं लिखा, प्रदेश विन्यास है ना, अभी उल्टी उल्टा टेपरिंग जिसको हम गोपुच्छकार उल्टा या सुल्टा ऐसा लेना उसको। ये ऊपर के निशे को में अधिक और नीचे के में कम होना, ये इसको अनुलोम और विलोम कहा। देखो इसका आगे देखते, ये तो अभी शंका चल रही है। तो काल विधान में उत्कृष्ट स्थिति का भी अनुलोम क्रम से प्रदेश विन्यास देखा जाता है। अतः इस काल विधान सूत्र में कहे गए प्रदेश विन्यास से यह व्याख्यान कैसे नहीं बाधित होगा? शंका है ना, हमेशा क्या होता है नीचे के निषेक में ज्यादा और ऊपर के कम, जिसको हम गोपुच्छकार रचना होती है निषेकों की, तो उसको अनुलोम कहा। अनुलोम क्रम से प्रदेश विन्यास यानी वो गोपुच्छकार रचना, नीचे ज्यादा और ऊपर कम। अभी उसका समाधान करेंगे। नहीं, क्योंकि गुणित घोलमान आदि के विषय में आए हुए काल सूत्र से इस व्याख्यान का बाधा जाना संभव नहीं है। वहां जो बातें आती है वो गुणित घोलमान जीव के संबंध में आई है। शंका, उच्चारण के समान भुजगार काल के भीतर ही गुणित तत्व क्यों नहीं कहते हैं? ये भुजगार आदि यानी वो पहले कम है बढ़ता है उसको भुजगार कहा था। ऐसे हीयमान भी होता है, अवस्थित भी होता है, ऐसे तीन प्रकार होते हैं। जो कम होता है वो तो हमने बंध के प्रकरण में देखे थे, पहले अधिक प्रकृतियों का बंध होता था और फिर कम होने लगा तो उसको हीयमान कहेंगे। पहले कम होता है फिर बढ़ता है, जैसे कोई ग्यारहवें गुणस्थान में है और वहां मरणों के चौथे में आ गया तो वहां बंधने वाली प्रकृतियां बढ़ गई ना। ऊपर तो एक वेदनीय बनती थी, अब चौथे में आएंगे तो सभी बंधने लगी, तो वो भुजगार बंध कहलाता है। भुजगार ने अधिक संख्या, तो अल्पतर काल से ये समाधान क्या कहते हैं? अल्पतर काल से भुजगार काल बहुत होता है। अल्पतर ने कम होना, हीयमान होना, और भुजगार ने बढ़ते जाना। इस उपदेश का अवलंबन करके वह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। अभी अपना विषय यहाँ नहीं हुआ है, भुजगार वगैरह संबंधी धवला में नहीं आया था, ये हमने कर्मकांड वगैरह में पढ़ा था। इतना ही यहाँ समझना, यहाँ जो निषेक रचना होती है वो विलोम वाली है, उल्टी होती है। ऊपर के निषेकों में अधिक माल है, नीचे के निषेकों में कम है। उसका कारण है क्या है? तो गुणित कर्मांशिकपना ही उसका कारण है। संकलेश विशुद्धि को भी उसका कारण नहीं बताया। और जनरली यानी आम तौर पर हम देखते हैं कि नीचे के निषेकों में अधिक होता है और ऊपर कम होता है, जिसको अनुलोम रूप वो प्रदेश विन्यास कहा। ये पेंसिल से ही लिखना, कभी कभी हम फिर चेंज करते हैं ना। ये अभी आगा 12 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। बहुसो बहुसो उपकसानी जोगठानानी गच्छदी। ये वही जीव की बात चल रही है अभी। एक 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 कंडीशन हमको एक एक सूत्र के द्वारा बता रहे। बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। ये तो अधिक से अधिक कलेक्शन चल रहे ना, हम करते हैं ना, अधिक से अधिक धन संचय चलता है। यहाँ तो कर्मों के संचय की बात हो रही। शंका, बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त करने में क्या लाभ है? वो भी अपने जैसा है, क्या फायदा वाला। समाधान, उत्कृष्ट योग स्थानों के द्वारा बहुत प्रदेशों का आगमन होता है, क्योंकि योग से बहुत प्रदेश आता है ऐसा वचन है। यानी प्रदेश बंध का कारण योग है, जहाँ ज्यादा योग है वहाँ अधिक प्रदेश है। यह सूत्र सामान्य को विषय करता है, अर्थात उत्सर्ग का व्याख्यान करने वाला है, इसलिए वह आयु के बंधकाल को छोड़कर अन्यत्र प्रवृत्त होता है। हमने देखा था ना, आयु के बंधकाल में ये अधिक को नहीं ग्रहण करता क्योंकि वो तो आठ में विभाजित हो जाता है। अन्यत्र ये उत्सर्ग व्याख्यान इसीलिए कहा, अपवाद व्याख्यान वो अलग है। यानी आयु बंध की बात छोड़कर वहां तो जघन्य योग से आयु बांधता है, और अन्यत्र उसके बिना अन्य कालों में अधिक अधिक बार उत्कृष्ट योग को इसने धारण किया है। आयु बंधने में भी जघन्य से उत्कृष्ट तक अलग अलग वेरिएशन है, परिणाम मध्यम है, योग की बात नहीं है। आयु बंधने योग्य भी जघन्य से उत्कृष्ट परिणाम ये योग हो सकते हैं, परंतु यहाँ वाला कौन सा जीव है जघन्य योग से बंधने वाला? परिणाम यानी परिणाम योग वाला परिणाम नहीं लेना। परिणाम योग तो योग की बात है, और यहाँ जो जीव के परिणाम संकलेश है, विशुद्ध है, कषाय तीव्र है, मिथ्यात्व तीव्र है, उसकी बात है। वो मध्यम परिणामों के द्वारा जो है, आयु का बंध कब होता है, अत्यंत तीव्र संकलेश में नहीं होता है, अत्यंत तीव्र विशुद्धि में भी नहीं होता। जैसे सातवें गुण स्थान के ऊपर आयु का बंध नहीं होता, वैसे तीव्र संकलेश तो कृष्णलेशा में आयु का बंध होगा कि नहीं होगा? हाँ होता है, परंतु उसमें भी जो अनेक वो असंख्यात लोक प्रमाण जितने भेद है उसमें भी अत्यंत तीव्र वाले कुछ छोड़कर वो मध्यम वाले में बंध होगा। एक क्योंकि नरक में एक ही होती है, मनुष्य में भी कृष्ण लेशा में बांध सकता है, फिर भी उसके मध्यम वाले में होगा, मध्यम मध्यम प्रकार, और उसमें भी मरण की लेशा अलग होती है और आयु बंध की अलग होती है। ये लेशा वाला बहुत बड़ा प्रकरण आपने पढ़ा था, हाँ ये बहुत बहुत संकलेश हो अभी आ रहे हैं। पीछे पीछे उन्होंने सामान्य से बताया था, यहाँ सूत्र में ही बताया, बहुसो बहुसो बहुसंकलेश परिणाम है बहुली, बहुत बहुत बार बहुत संकलेश रूप परिणाम वाला होता है। शंका, बहुत बहुत बार बहुत संकलेश रूप परिणामों को क्यों प्राप्त कराया जाता है? तो उसका समाधान, बहुत द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए और उत्कृष्ट स्थिति का बंध कराने के लिए बहुत बहुत बार बहुत संकलेश रूप परिणामों को प्राप्त कराया जाता है। फिर शंका, उत्कृष्ट स्थिति ही किस लिए बंधाई जाती है? समाधान, अधस्तन गोपुच्छों की सूक्ष्मता के विधान के लिए और ऊपर दूर उत्क्षिप्त कर्मस्कंदों के उपशामना व निकाचना करणों द्वारा अपकर्षण का निवारण करने के लिए उत्कृष्ट स्थिति बंधाई जाती है। ये उत्कृष्ट स्थिति वाला बंध क्यों कह रहे हो? हमें तो वो गुणित कर्मांशिक वाले की बात चल रही है, किसके ये ज्यादा से ज्यादा संचय है? तो कहते हैं अधस्तन गोपुच्छों की सूक्ष्मता के विधान के लिए, ये तीव्र संकलेश रूप में उत्कृष्ट स्थिति बनती है। तो कहते हैं कि अधस्तन यानी नीचे वाले गोपुच्छों की सूक्ष्मता, उसमें कम परमाणु ऊपर ज्यादा, और ऊपर दूर उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त यानी ऊपर उत्कर्षण किए हुए कर्मस्कंदों के, ये जो ऊपर डाले हैं कर्मस्कंद वे वहीं पर बने रहेंगे तो उसको उपशामना कहेंगे। ये कर्मों का उपशमों का समय तो उसकी बात नहीं है, ये जनरल सामान्य उपशामना जो होती है अन्य भी कर्मों में होती है। तो कहते निकाचना करणों द्वारा, निकाचन में फिर भी उसमें वो उत्कर्षण वगैरह संक्रमण कुछ नहीं होता, उसको भी निकाचन कहते हैं, उदीर्णा वगैरह उसमें नहीं होगी, उसके द्वारा अपकर्षण का निवारण करने के लिए, यानी जो लंबी स्थिति बंधी है उसमें अपकर्षण द्वारा वो नीचे नहीं आ सके, ऐसी स्थिति बनती है उनकी, इसलिए यहाँ बहुत बहुत बार संकलेश की बात की। एवं संसरी दूण बादर तसपज्जत्तये सुववन्नो, इस प्रकार परिभ्रमण करके बादर त्रस पर्याप्तको में उत्पन्न हुआ। पहला जो काल कितना उसको घुमाया बादर पृथ्वी कायिक में, हाँ कर्म स्थिति में से, हाँ साधिक 2000 सागर कम, तो ये जो कम किया है वो अभी उसमें उत्पन्न हुआ है, बादर त्रस में अभी आया है। पहले उतना कम काल वहां इसीलिए किया था कि वो काल अभी यहां बिताएगा। इस पूर्वोक्त विधि से कर्म स्कंदों का संचय करता हुआ एकेंद्रियों में त्रस स्थिति से रहित कर्म स्थिति प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके बादर त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। सूत्र में त्रस शब्द के निर्देश का फल स्थावरों का प्रतिषेध करना है, यानी अभी वो जो उर्वरित उसका काल है कर्म स्थिति में से रिमेनिंग साधिक 2000, वो अभी त्रस में आया है। वो शंका, इस प्रकार स्थावरों का प्रतिषेध किस लिए किया जाता है, उसका समाधान, स्थावर योग से असंख्यात गुणे त्रसों के उत्कृष्ट योग द्वारा कर्मों का संचय करने के लिए एकेंद्रियों में जो योग है उसको स्थावर योग कहा। उनकी अपेक्षा त्रसों का जो योग है वो असंख्यात गुणा ज्यादा है, तो वहां कर्मों का संचय भी अधिक होगा। इसलिए स्थावरों की कर्म स्थितियों से संख्यात गुणी कर्म स्थितियों में कर्म स्कंदों का विरलन करके स्थावर जितनी कर्म स्थिति बांधते हैं उससे यहां संख्यात गुणा कर्म स्थिति बंधेगी। देखो वहां मानते हम एक सागर भी बांधी और यहां 30 कोड़ा कोड़ी बांधी तो भी संख्यात ही है ना वो, इसलिए स्थावरों की स्थिति से यहां की स्थिति कर्म स्थिति संख्यात गुणी है। उसमें कर्म स्कंदों का विरलन करके, विरलन यानी बिखेर देना उसको, गोपुच्छों की सूक्ष्मता का विधान करने के लिए तथा उत्कर्षण करके दोनों करणों द्वारा अपकर्षण का निराकरण करने के लिए स्थावरों का प्रतिषेध किया गया है। ये जो पहले हमने देखा था, दो करण द्वारा अपकर्षण का निवारण करते हैं, कौन से, यहाँ उपशमना और निकाचना करणों द्वारा, ऐसा उसमें आया था, अभी हमने 46 पृष्ठ पर पढ़ा था। ये स्थावरों का क्यों निषेध किया उसका कारण बताते हैं, क्योंकि हमें अधिक से अधिक कर्म संचय करने वाला जीव चाहिए। एक तो त्रसों में योग ज्यादा है, वहां स्थिति भी अधिक बंधी जाएगी, जैसे योग भी ज्यादा है प्रदेश भी अधिक ले लेगा तो अधिक काल तक वो उसकी निषेक रचना भी होगी। पर्याप्तकों के निर्देश का फल अपर्याप्तकों का निषेध करना है। ये त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ बात आई थी ना बीच में, उसके लिए कहते। फिर शंका, अपर्याप्त भाव का भाव क्या है, ऊपर क्या है, अपज्जत परिसेह फलो किमत अपज्जत भावो, भाव ही है। अपर्याप्त भाव का प्रतिषेध किस लिए किया जाता है, उसका समाधान, अपर्याप्तकों के तीन प्रकार के योगों की अपेक्षा, ये तीन प्रकार के योग याद है, हाँ, उपपाद, एकांत अनुरुद्धि और परिणाम, उनकी अपेक्षा असंख्यात गुणे तीन प्रकार के पर्याप्तकों के योगों द्वारा कर्म का संचय करने के लिए, एक बात, फिर दूसरी, अधस्सन निषेकों की सूक्ष्म रूप से रचना करने के लिए, नीचे वाले निषेकों में कम परमाणु वो बताने के लिए, और उपशामना एवं निकाचना करण द्वारा, एवं और निकाचना के बीच क्या चाहिए, अपकर्षण का प्रतिषेध करने के लिए अपर्याप्तकों का प्रतिषेध किया गया है। ये सभी ऐसे ही जीव लिए या ऐसी बातें ली कि जिसके कारण अधिक से अधिक वहां कर्म का संचय हो जाएगा। बादर शब्द के निर्देश का प्रयोजन सूक्ष्मता का प्रतिषेध करना है, यानी सूक्ष्म में नहीं, अभी द्विंद्रिय आदि त्रस है वो सब बादर ही होते हैं, इसलिए बादर त्रस पर्याप्त ऐसा लिखा, बाकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो विनोद में।